ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه مومنین اور مومنات عزاداران مظلوم کربلا عزاداران بنت پیمبر پانچ روزہ مجالس کا یہ سلسلہ جو آج شروع ہو رہا ہے کہ جس کا اختتام شہزادی کونین خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام پر ہوگا ان پانچ ایام میں جو آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے لیے جو عنوان سخن قرار دیا گیا ہے وہ عنوان خطبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے یوں تو بی بی سلام اللہ علیہا کے اسی خطبہ فدق کے علاوہ اور بھی خطبے موجود ہیں کہ جو حدیث کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر وارد ہوئے ہیں لیکن یہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے صرف اور صرف اپنے مقدمہ فدق کو نہیں بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ دین مبین اسلام کا ایک خاکہ جو ہو سکتا تھا دین مبین اسلام کا جو ایک خد و خال آپ جسے کہہ سکتے ہیں ایک آؤٹ لائن کہہ سکتے ہیں اس کا ایک فریم ورک کہہ سکتے ہیں وہ بی بی سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ہے یہ اور بات ہے کہ خود یہ ایک سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ رسول کی بیٹی کو اپنے گھر سے دربار آنا پڑا اور وہ سارے کے سارے مصائب اور مظالم جو تاریخ جن پر گواہ ہے وہ سارے کے سارے بی بی نے جھیلے ہیں اور جن مراحل سے جن مصائب سے بی بی گزری ہیں اور خود ان مصائب میں سے ایک مصیبت کی کڑی یہ خود ہے کہ بی بی کا دربار میں آ جانا یہ ایک وہ مصیبت ہے کہ جس کے بارے میں یقیناً جب مصائب کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس پر ہم گریہ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے دربار دیکھا लेकिन अज़ान मोहतरम उस खुतबे के जो अल्फाज हैं उन पर थोड़ा सा गौर करें ताकि वो पैगामात के जो हमारे लिए हैं वो हम तक पहुँच सकें। सबसे पहले ये कि ये जो खातून हैं, ये जो बीबी हैं, ये जो शख्सियत हैं, ये जो हस्ती हैं, ये कौन है? ये वो हैं कि जो रसूल अकरम के लिए, वो रसूल अकरम के जो कायनात के लिए रहमत बनकर परवरदिगार आलम की जानिब से भेजे गए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। कहीं पर परवरदिगार आलम ने रिसालत माब के लिए ये इरशाद फरमाया कि हमने तुझे रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा, और कहीं पर जब रसूल पर मसाइब का पहाड़ तोड़ा गया, चाहे वो ताइफ की बात हो या किसी और जगह पर, रसूल को कभी पत्थर से, कभी कंकर से, कभी किसी और ज़रिए से जब रसूल को अजियतें पहुंचाई गईं और पहुंचाने की कोशिश की गई, और उनमें से एक ऐसा वाकया कि जब जनाब जिब्रील अमीन ने आकर रसूल से ये पूछा था कि या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमा दीजिए, चाहे अपनी आँखों के जुम्बिश के ज़रिए से, चाहे लबों की हरकत के ज़रिए से, चाहे पलकों के झपकने के ज़रिए से, मुझे आपकी आमादगी का, आपकी रजामंदी का इजहार पता चल जाए, तो ये जो दो पहाड़ हैं, इन दोनों पहाड़ों को आपस में ऐसे मिला दूंगा कि दरमियान में बसने वाली वो कौम के जिसने आप पर जुल्म किया, वो कौम के जिसने आपको अजियत दी, वो ख़त्म होकर और भस्म होकर रह जाएगी। तो वहाँ पर रसूल अकरम ने, सरकार दो आलम ने, खत्मी मरतबत ने ये इरशाद फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इनके लिए रहमत का सबब बनाकर भेजा है, मैं इनके लिए जहमत बनना नहीं चाहता। तो वो नबी के जो कायनात के लिए रहमत हो, परवरदिगार आलम ने उस नबी रहमत के घर में जिसे रहमत बनाकर भेजा है, उस हस्ती का नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये वो हस्ती है कि जिनका नूर अजल से है, जिनका नूर शुरू से है, जिनका नूर रोज़े अव्वल से है, बिल्कुल वो वक्त के जब रिसालत माँ बिरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहली वो शय कि जिसे अल्लाह ने खल्क फरमाया, जो मारज वजूद में आई है, जब मारज खिलकत में आई है, वो है मेरा नूर। रिसालत माँ इरशाद फरमाते, तो कहीं पर रसूल ये इरशाद फरमाते, कुन तो नबीयन वल आदम बैनल माए वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त मौजूद था, नहीं फरमाया है कि कुन तो मौजूदन वल आदम बैनल माए वत्तीन, नहीं, ये नहीं कहा है कि कुन तो मौजूदन, मैं उस वक्त भी मौजूद था, मैं वजूद रखता था, कि वल आदम बैनल माए वत्तीन, के जब आदम आब व गिल के दरमियान थे, यानी कि पानी और मट्टी के दरमियान थे, नहीं फरमाया, ये फरमाया कि मैं उस वक्त भी वजूद रखता था, मौजूद था, बल्कि मनसब नबूवत पर उस दिन से था कि जब अभी आदम मारज वजूद में इस तरह से नहीं आए थे, उनकी खिलकत के मराहिल मुकम्मल नहीं हुए थे। तो लिहाजा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अव्वल से अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी के मिज़दाक़ हैं। उसूल काफ़ी के अंदर एक हदीस है कि जो हदीस ये कहती है, छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहि सलातो वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, मौला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह खलका नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व कसमहा किस्मैन, के परवरदिगार आलम ने नूर खत्मी मरतबत को खल्क फरमाया, और रसूल के नूर को खल्क करने के बाद परवरदिगार आलम ने उसके दो टुकड़े फरमाए, एक नूर रिसालत में आपका, दूसरा जो टुकड़ा था वो कौन सा नूर था? वो नूरे नूरे अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नूर से खल्क पाने वाला वो नूर कौन? मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का नूर, नूरे मोहम्मद और नूरे अली। फ़कसम सिनचैन असिनचैन, तो फिर परवरदिगार आलम ने इन दो को मज़ीद दो टुकड़े किए, फसारत अरबातुन, तो चार हो गए, कौन कौन से? अब नूर मोहम्मद है, नूर अली है, नूर हसन मुश्तबा, नूर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये चार अनवार हो गए। फिर ये इरशाद होता है, यानी कि आतिफ़ गैबी की सदा आती है कि फिर खलका नूरा फातिमा ज़हरा व अफाजा या अफजा नूरा हफीना, फिर परवरदिगार आलम ने नूर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खल किया, और उस बीबी के नूर को, यानी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नूर को खल करने के बाद उसकी शुआएँ या उस नूर को हम चारों के अनवार में फैला दिया, यानी कि अब नूरे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा में भी छलक रहा है, नूरे जनाब सैयदा नूरे अली मुर्तज़ा से भी छलक रहा है, नूरे हसन मुश्तबा नूरे हसन मुश्तबा से भी छलक रहा है, हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम से भी छलक रहा है। यही वजह है, या ये समझ लीजिए कि ये भी एक वजह है कि परवरदिगार आलम ने जब तारुफ पंजतन पाक करवाया है तो ये नहीं कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौन चादर के नीचे हैं, जब जनाब जिब्रील ने पूछा तो ये जवाब नहीं दिया कि चादर के नीचे कौन है तो फरमा दिया कि ये रसूल हैं, रसूल की बेटी है, रसूल के दामाद हैं, रसूल के नवासे हैं, नहीं नहीं तारुफ करवाया मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के जरिए से, बल्कि अगर तारुफ कराया तो जिस मरकजी शख्सियत के जरिए से तारुफ करवाया है वो शख्सियत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की है। फरमाया हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, यानी कि वो नूर के जो नूर पांच चारों अनवार के अंदर जाफिगन है और अफशा है और चमक रहा है, जिसकी शुआएं उठ उठ रही हैं, ये वो बीबी है कि जो मरकज तहारत है और जो मरकज किसाए। अच्छा, ये बीबी घर से चलती हैं, एक जानेब हसन है एक जानेब हुसैन है अलैहिमस्सलाम, और बीबी ने अपने सर पर जो चादर डाली जाती है, ख्वातीन जो एक सर पर चादर लेती हैं वो बीबी के सर अकदस पर है, और एक जिसे हम पूरी चादर कहेंगे कि जो पूरे के पूरे सर अकदस से लेकर पाए अकदस तक बीबी के पूरे वजूद अकदस को छुपा रही है और ढांक रही है और हिजाब में लेकर आ रही है, वो चादर बीबी ने अलग से पहन रखी है। और बीबी इस तरह से चलते हुए आ रही हैं कि देखने वाली ख्वातीन ने, कि जो मुहाजरीन और अंसार दोनों ही की ख्वातीन हैं, उन्होंने कहा कि बीबी का, बीबी की जो मशी है, मशी बीबी का जो चलना है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज था, बिल्कुल वैसा ही अंदाज है रसूल की बेटी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब तशरीफ लेकर आ रही हैं दरबार में। अब एक जानिब इमाम हसन है, एक जानिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अंसार का मजमा वहां पर मौजूद है, मुहाजरीन का मजमा वहां पर मौजूद है, जो अफराद हैं जो जालिमीन हैं उनका मजमा वहां पर मौजूद है, ख्वातीन वहां मौजूद है, मर्द वहां पर मौजूद है, एक जम गफीर और जम कसीर वहां पर मौजूद है, और उसके मजमे के दरमियान बीबी ने खुतबा इरशाद फरमाया है। यही वजह है कि इस खुतबे को खुतबा लुम्मा या खुतबा लिमिया दोनों एतबार से मिलता है कि खुतबा लुम्मा, ये खुतबा खुतबा लुम्मा के नाम से भी मशहूर है, मारूफ है किताबों के अंदर, इसलिए कि लुम्मा किसे कहते हैं, लुम्मा कहते हैं मजमे को, और बीबी ने यह खुतबा चूंकि मजमे में दिया है इसलिए इस खुतबे को खुतबा लुम्मा भी कहा जाता है। अब आ जाइए, ये खुतबा किन किन लोगों ने इस खुतबे को नकल फरमाया, अहले सुन्नत किताबों के अंदर, अहले सुन्नत उलमा बिरादराने अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उन्होंने अपनी किताबों के अंदर कहां कहां पर किन किन उलमा ने इसे नकल फरमाया, मैं चंद एक उलमा के नाम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, और उसके बाद फिर हम इस खुतबे के मतन की तरफ बढ़ेंगे, जितना आज की हद तक हो सका उतना आपकी खिदमत में बयान करेंगे, उसकी थोड़ी सी तशरी होगी, बहुत ज़्यादा बात को मुश्किल बनाएंगे नहीं, इसलिए कि ये वो खुतबा है कि जिस खुतबे की तशरी के अंदर मुतअद्दिद यानि मल्टीपल वॉल्यूम्स, मल्टीपल जिल्दें यानि मुतअद्दिद जिल्दों के ऊपर एक एक खुतबे की शरह तीन जिल्दें, पाँच जिल्दें, छः जिल्दें, सात जिल्दों तक भी उलमाए किराम ने किए। तो वो उलमाए अहले सुन्नत के जिन्होंने बीबी के इस खुतबे को नकल फरमाया या जिसको रिवायत फरमाया, उन उलमाए अहले सुन्नत के नाम आपकी खिदमत में अर्ज करने लगे, इब्ने अब्दुल अजीज जौहरी, नंबर दो इब्ने अबिल हदीद मोतजली जो साहेब शरह नहज बलागा भी हैं और जिन्होंने कसीदा ऐनिया लिखा मौला कायनात अलैहिस्सलाम की शान में, कि जो आज भी मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर के गुम्बद के चारों तरफ लिखा हुआ है कसीदा ऐनिया, जिसका काफिया ऐन पर आकर ख़त्म होता है। तो जिनका ताल्लुक मसलक के अहले बैत से नहीं है, अहले सुन्नत मसलक के उलमा इब्ने अब्दुल अजीज़ जौहरी, इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली, इब्ने अबी याकूब, कौन हैं ये इब्ने अबी याकूब, जिन्होंने अहले सुन्नत मसलक की तारीख की एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, तारीख याकूबी के नाम से जो मारूफ है। तो इब्ने अबी याकूब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी इस खुतबे को नकल किया है। अबुल फरज इस्फहानी, शेख सिबत इब्ने जौजी और इब्ने असीर जजरी, अब ये जो तीनों नाम है इन तीनों की अपनी अपनी या तारीख की किताब है या हदीस की किताब है या तफसीर की किताब है, ठीक है। अबुल फरज इस्फानी की तफसीर की किताब है, सिप्त इब्ने जौजी की जो है वो तारीख की किताब है, और इब्ने असीर जज़री की भी तारीख और तफसीर दोनों ही मौजूद हैं। ये थे अहले सुन्नत उलमा कि जिन्होंने अपनी अपनी किताबों के अंदर बीबी के इस खुतबा फदक को या खुतबा लुम्मा को या लिम्मिया को नकल किया है और उसे लिखा है, और ये कहते हैं कि ऐसा हुआ था और बीबी तशरीफ़ लाई थी और बीबी ने खुतबा दिया था, और उसका पूरा वही मतन कि जो हमारे यहाँ पर मौजूद है वही पूरा का पूरा मतन उन्होंने भी अपनी किताबों के अंदर लिखा है। अब आ जाइए वो अहले तशी उलमा कि जिन्होंने बीबी के इस खुतबे को नकल किया है अपनी किताबों के अंदर, उनके नाम भी सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा नाम नहीं, तीन या चार नाम आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं कि इब्ने जरीर तबरी, तारीख तबरी वाले इब्ने जरीर तबरी, शेख सदूक, शेख तबरसी के जिन्होंने किताब अल एहतजाज लिखी है, साहिब अल एहतजाज, और इब्ने शहरा शोब माजंदरानी के जिनकी बहुत मारूफ किताब है मनाकिब इब्ने शहरा शोब के नाम से जो मारूफ है। लिहाजा ये वो उलमाए कराम हैं कि जिन्होंने बीबी के इस खुतबे को नकल फरमाया है। हम जो आपकी खिदमत में नकल किया या हम जो जिस सनद का हवाला आपको देना चाहते हैं कि उमूमन ये पूछा जाता है कि क्या ये जो बीबी ने खुतबा इरशाद फरमाया है ये सनद के एतबार से मुस्तनद है या नहीं है, तो उसका जवाब यह है कि इसे सैयद शरीफ मुर्तज़ा अलमुल हुदा कि जो हमारे अहले बैत अथार के मसलक के उलमा का बहुत बड़ा नाम और उनकी एक अमाली है डिक्टेशंस ऑफ सैयद शरीफ मुर्तज़ा, बड़ी मोटी सी किताब है और उसके अंदर तफसीर के एतबार से भी और बहुत सारे यानी कशकोल जैसी एक किताब है कि जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी मारकतुल आरा मजामीन पर तसनीफात और तालीफात फरमाई हैं। तो सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा, सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा ने नकल किया, और ये वो आलम दीन हैं कि जिनकी ताईद, कौन है ये, अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद शरीफ मुर्तज़ा कि जिनकी ताईद फरमाई है अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम ने कि जिनका नाम है शम्सुद्दीन ज़हबी, यानी कि अल्लामा ज़हबी जिनको कहा जाता है, और एक और आलिम है अश्शाफ़ी फ़िल इमामा के अंदर वो असनाद नकल करते हैं, अल्लामा याकूत हमवी शाफ़ई, अल्लामा याकूत हमवी शाफ़ई, उन्होंने लिखा है कि अश्शाफ़ी फ़िल इमामा, अश्शाफ़ी फ़िल इमामा कौन सी किताब है, ये अश्शाफ़ी फ़िल इमामा वो किताब है कि जिस किताब के अंदर सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा ने इस खुतबे को रिवायत किया है और नकल किया है, और इमामत के उनवान से ये किताब लिखी गई है, इमामत के उनवान पर सब्जेक्ट ऑफ द इमामत के ऊपर लिखी गई है। तो सैयद याकूत हमवी शाफ़ई ने लिखा कि लम युसनफ मिसल हाजल किताब फिल इमामा, कि इमामत के मौजू पर मैंने इससे अच्छी किताब लिखी हुई आज तक नहीं देखी है। कौन फरमा रहे हैं, अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन फरमा रहे हैं। लिहाजा आ जाइए हम बराह रास्त बीबी के उस खुतबे की तरफ चलें कि जिसका हवाला दिया जा रहा है और जिसको जिक्र करने की सआदत हासिल की जा रही है। बीबी का ये खुतबा हमदे परवरदिगार आलम से जिसका आगाज हो रहा है, और बीबी ने सबसे पहले हमदे इलाही को बयान किया, फिर परवरदिगार आलम की अताओं को बयान किया, और उसके बाद उसकी तौहीद का बयान किया, फिर परवरदिगार आलम की जानिब से जो मनसब नबूवत पर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ायज़ हुए हैं उस मनसब नबूवत का जिक्र किया बीबी ने, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात, और रसूल अकरम का इस कौम को जुल्मत के अंधेरों से निकालना, जिस पस्ती में ये कौम थी उस पस्ती से निकाल कर कुशादगी के अंदर लेकर आना, नूर में लेकर आना, जुल्मत से निकाल कर, बुरे हालात से निकाल कर अच्छे हालात में लेकर आना, वो बुरे हालात क्या थे कि जिसमें वो कौम जिंदगी कर रही थी, ये सारा कुछ इस खुतबे के अंदर बीबी ने इरशाद फरमाया है। और उसके बाद जब बीबी तौहीद पर कुछ गुफ्तगू फरमा लेती हैं, फिर नबूवत पर कुछ गुफ्तगू फरमा लेती हैं, तो उसके बाद बीबी ने यह इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम ने जो इबादतें बंदों पर अपने वाजिब की हैं या जो फर्ज की हैं या जिनका हुक्म दिया है उसका फलसफा क्या है, यानी कि अगर नमाज परवरदिगार आलम ने वाजिब की है तो क्यों, रोजा किस लिए आया, ज़कात क्यों आई है, जिहाद का हुक्म क्यों दिया गया, اور یہ سارے کے سارے صدقہ وغیرہ یہ بی بی ارشاد فرماتی جا رہی ہیں، ایک ایک عبادت کا ذکر فرماتی ہے اور اس عبادت کی حکمت کو یا اس کے فلسفے کو بی بی نے بیان کیا. یہی وجہ ہے کہ جسے ہم فلسفہ عبادات کہتے ہیں. خود بہت ساری ایسی روایات کہ جو روایات اسی موضوع پر ہیں کہ فلسفہ کیا ہے عبادتوں کا. خیر تو آغاز کریں گے پہلے جملے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بی بی کے کسی جملے کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ انت بی بی نے مجمع کے سامنے جب بی بی تشریف لے کر آئی ہیں اور خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا ہے، اس سے پہلے بی بی نے بہت شدید گریہ فرمایا اور اتنا گریہ فرمایا اور پھر اپنے بابا کا نام بھی لیا، اور جیسے ہی بی بی کی زبان مبارک سے ان کے بابا کا نام یعنی کہ رسول خدا کا نام، کہ جن کی ابھی ابھی رحلت ہوئی ہے وہ ابھی ابھی پردہ فرما کر گئے ہیں، تو مجمع نے جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے تو سارے کے سارے گریہ کرنے لگے، رونے لگے، اور کافی دیر تک گریہ لوگوں کا جاری رہا. رسول کا نام، رسول کی دختر، رسول کی بیٹی سلام اللہ علیہا کی زبان اقدس سے سن کر لوگ بہت زیادہ گریہ کرنے لگے کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ جب لوگوں کا گریہ تھما تو پھر بی بی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر فرمایا، الحمدللہ علام انعما ولہ الشکر علام الہما والثناء بما قدما. حمد ہے پروردگار عالم کی اس ہر اس چیز پر، ہر اس نعمت پر کہ جو اس نے عطا کی. الحمدللہ علام انعما، علا پر، ما انعما جو کچھ اس نے عطا کیا، جو کچھ اس نے پروردگار عالم نے عطا کیا اس پر اس کی حمد ہے. حمد، حمد صرف حمد نہیں کہا ہے، الحمد کہا ہے. الحمد کا معنی اور حمد کا معنی بہت فرق کرتا ہے، اور فرق یہ کرتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حمد للہ یا صرف حمد کہہ دیں اور یہ کہیں کہ الحمد للہ تو اس کا معنی میں یہ فرق ہو جاتا ہے، الحمد للہ کے معنی میں یہ فرق ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری حمد، ساری کی ساری تعریفیں، ساری کی ساری حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے للہ ہے. علام انعما ولہ الشکر علام الہما، اور اس کا شکریہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں الہام کیا. کیا ہوتا ہے الہام؟ بی بی فرما رہی ہیں تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر، اور جو جو پروردگار عالم نے ہمیں الہام فرمایا اس پر بھی اس کا شکر، اور جو نعمتیں عطا کی اس پر اس کی حمد. تو کیا ہوتا ہے الہام؟ الہام القا کی قسموں میں سے یا وحی کی قسموں میں سے ایک چھوٹی قسم ہوتی ہے. الہام یعنی کہ کسی کے دل میں کوئی خیال ڈال دینا، یعنی کہ کسی کو راستہ دکھا دینا، یا یہ ایک سمجھ لیجئے کہ کسی کو راستے سے ہٹا دینا. ونفس وما سواہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. اور قسم ہے نفس کی، وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. کیسے نفس فجور اور تقوی کا الہام کرتا ہے؟ انسان کو نفس الہام کرتا ہے کس چیز کا؟ یا فجور کا یا تقوی کا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نفس کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ تمہارا معاملہ حل نہیں ہو رہا، ایک کام کرو، جھوٹ بول لو، تمہارا کام ہو جائے گا. یہ الہام ہو رہا ہے نفس کی طرف سے. یا مثال کے طور پر وہی الہام جو ابھی ابھی ہوا ہے نفس امارہ کی طرف سے، کہہ لیجئے نفس امارہ کیا کہہ رہا ہے؟ نفس امارہ کہہ رہا ہے کہہ دو جھوٹ، ایک ہی تو جھوٹ بولنا پڑے گا. لیکن نفس لوامہ اسی وقت الہام کر رہا ہے اور اس کے کاؤنٹر الہام میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جھوٹ مت بولنا، تھوڑی سی ڈانٹ ملے گی کھا لینا ڈانٹ، تھوڑا سی سرزنش ہوگی تمہاری سہ لینا، برداشت کر لینا، مگر جھوٹ نہ کہنا. اس لیے کہ اگر ایک جھوٹ بولو گے تو پھر اس کے پیچھے اور 10 جھوٹ ہیں گے جو تمہیں کہنے پڑیں گے، بولنے پڑیں گے. بالکل اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دے دو، किसी के पैसे पड़े हुए हैं, अभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, बाद में मैं उसे वापस कर दूंगा। उसे क्या पता चलेगा कि मैंने उसके पड़े हुए पैसे जो मेरे पास अमानत के तौर पर थे वो मैंने इस्तेमाल कर लिए। तो ये नफ्स की तरफ से आ रही है। यही वजह है कि जब ये सवाल किया जाता है कि लोग ये कहते हैं अल्लाह की अदालत के ऊपर सवाल उठाते हैं कि परवरदिगार आलम नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक आदिल नहीं है, उसने शैतान को खल कर दिया है। अगर शैतान नहीं होता फिर हम बताते कि हम कितने बड़े आबिद हैं। अगर परवरदिगार आलम ने ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखी होती तो फिर हम बताते कि ये फसाद तो कुछ भी नहीं होता। क्या ज़रूरत थी परवरदिगार आलम को शैतान को खल करने की? अगर शैतान होता ही नहीं तो इस कायनात के अंदर कोई जुर्म ही ना होता, किसी का हक ही गसब ना होता, किसी का कोई हक ज़ाया ना होता। तो अगर शैतान ना होता और इंसान बच जाता तो फिर इसमें इंसान का क्या कमाल होता? अगर सिचुएशन आइडियल सिचुएशन होती और उसके अंदर इंसान कुछ करने की का इम्कान ही नहीं रखता, कोई इख्तियार ही ना रखता, रोबोट बना दिया जाता, तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि फिर सब कुछ ठीक जैसे सेट कर दिया जाता वैसे ही होता रहता। तो अगर ये कर दिया जाता तो फिर नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता कि फिर कयामत के दिन हिसाब व किताब और जजा व सजा की कोई बात वैलिड ही नहीं रहती कि फिर किस बात की सजा दी जाए किसी को या किस बात की जजा दी जाए। अगर जजा किसी को दी जा रही है तो इसी बात पर तो जजा दी जा रही है कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी तू अपना ईमान बचाकर आगे निकल आया, इतनी सारी के सारे हर्डल्स के बावजूद भी तुमने जो दीन परवरदिगार आलम ने नाजिल किया था, जिस पर तुम्हें अमल पैरा होने का कहा था कि करने में वह तमाम मिनन वालहा और सारी की सारी नेमतें फरावानी के साथ अदा की, कभी कोई कुछ कम नहीं पड़ा, कभी कुछ कम नहीं पड़ा कि हमारी जरूरतें बच गई हों, रह गई हों और हमने अभी इस्तेफादा न किया हो न कर सके हों। परवरदिगार आलम की कभी खत्म न होने वाली नेमतें, जम्मा अनिल एहसा ए अददुहा व नआ अनिल जजा ए अमदुहा। परवरदिगार आलम ने दो लफ्ज हैं, एक है जम्मे कसीर, एक है जम्मे गफीर और जम्मे कसीर, दो चीज। जम यानी कसरत, मतलब क्या है इसका? जम्मा अनिल एहसा ए अददुहा व नआ अनिल जजा ए अमदुहा, ये दो जुमले हैं, दो जुमले। पहले जुमले का मतलब यह है कि अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि उसके अदद का इंसान पता नहीं लगा सकता। उसकी नेमतें ये कौन फरमा रहा है? रसूल की बेटी हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमा रही है कि याद रखना कि परवरदिगार आलम की नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि उसका अदद क्या है यह आप पता नहीं लगा सकते, उसका अदद आप काउंट नहीं कर सकते। व ना अनिल जजा ए अमदुहा और जजा ए अमदुहा और जजा ए अमदुहा और उसके शुक्र की अदायगी की जो बाउंड्री है इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। कैसे पहुंचेगा? जब मुझे परवरदिगार आलम की अता करदा नेमतों का काउंट ही नहीं पता, जब मुझे यही नहीं पता कि उसकी जो नेमतें हैं वो कितनी हैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसका शुक्र कैसे अदा होगा? लेकिन अज़ान मोहतरम शुक्र माना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इंसान परवरदिगार आलम का शुक्र करने के लिए, एक लफ्जी शुक्र तो है इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इंसान ये कहे शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, और अगर इंसान शुक्र अदा करता है यानी कि परवरदिगार आलम की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करता है तो क्या होता है? कुरान करीम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र किया तो हम। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की आयत नहीं बल्कि उसकी एक रिफ्लेक्शन और उसकी एक परछाई इसी खुतबे के अगले जुमले के अंदर मौजूद है। तराके अबदुहा व नदबहुम लिस्तिजादतिहा बिशुक्रे लित्तिसालिहा, और परवरदिगार आलम ने लोगों को अपने शुक्र की दावत दी कि आओ मेरा शुक्र अदा करो ताकि मैं तुम्हें नेमतों से कनेक्टेड रखूं। तुम्हें कभी नेमतों से डिस्कनेक्ट अगर नहीं होना है, अगर तुम ये चाहते हो कि आज वो नेमत जो तुम्हें मिली हुई है वो कभी खत्म ना हो या वो परवरदिगार आलम तुमसे वापस ना ले ले और उसमें सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही होता चला जाए, तो जितना हो सके तुम्हारे लिए उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या फरमाया? वनबहुम लिस्तिजादतिहा, इस्तिजादतिहा, हा की जमीर कहां पलट रही है? नामा और आला की तरफ पलट रही है कि नेमतों की तरफ और आला की तरफ। उनके तलबे ज्यादती के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? बेशुक्र लित्त सालिहा, परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करे इस बात पर कि उसने वो नेमतें उसे अदा की। सवाल, किसी ने छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला से पूछा कि आका ये बताइए कि क्या कोई ऐसा काम है जो इंसान अदा करे तो ये कहा जाए कि उसने शुक्रिया अदा किया, कि शुक्र गुजारों में उसका नाम आ गया। हक के शुक्र अदा करने की बात नहीं की जा रही है, इसलिए कि अगर हक के शुक्र अदा करेंगे तो फिर इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ही की वो हदीस आ जाएगी कि मैं उसका शुक्र अदा, और फिर खुद रिवायतों के जुमले अपनी जगह पर है, मासूरा दुआओं के जुमले अपनी जगह पर हैं कि ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र कैसे अदा कर सकता हूँ कि अभी एक शुक्र को मुकम्मल करने से पहले ही एक दूसरे शुक्र का तकाजा पैदा हो जाता है जो इस शुक्र को अदा करने में मैंने तेरी नेमतों को इस्तेमाल करने के जरिए से किया है। अभी मैंने तेरी एक शुक्र का, एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए भी मुझे जो जबान चलानी पड़ी वो तेरी है। जो ये ख्याल आया दिमाग में वो दिमाग तेरा अदा किया हुआ है, वो इस्तेमाल किया, तो अभी तेरा ही शुक्र अदा करने के लिए तेरी नेमत, तो अभी एक शुक्र, एक नेमत का शुक्र अदा नहीं होता, दूसरी नेमतों का शुक्र का तकाजा पहले से पैदा हो जाता है। अच्छा, लेकिन यहां पर इमाम सादिक अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं तो फिर कैसे ये करे कि जो अल्लाह ने उसे माल और अहल में से नेमतें अता की हैं उसको परवरदिगार आलम की तरफ पलटाए, ऐसे कि उनसे वो काम ले कि जो परवरदिगार आलम की खुशी वाले काम है, कि जिनसे खुदा की रजामंदी हासिल होती है। और फिर उसके अंदर मिसालें उस रिवायत के अंदर कि किस तरह से सुभान अल्लज़ी सखरा लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून, कि जब इंसान अपनी सवारी के अंदर बैठता है तो ये जो दुआ पढ़ता है, ये उसका दुआ पढ़ना अपनी उस सवारी की नेमत का शुक्र अदा करने की कोशिश करना है। रिसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र के बारे में ये रिवायत मिलती है कि जब रसूल को कोई ऐसी नेमत या कोई ऐसी चीज़ रसूल को मिलती थी या रसूल के पास आती थी कि जिससे रसूल मसरूर हो जाते थे, खुश हो जाते थे, कोई चीज़ रसूल के पास ऐसी आई है कि जिसने रसूल को खुश कर दिया है, तो उस पर रिसालत माम इरशाद फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह अला हाज़िहिन नेमा, हम्द है परवरदिगार आलम की इस नेमत पर। और अगर कोई ऐसी चीज आ जाती थी रसूल के सामने कि जिससे रसूल गमगीन हो जाते थे, जिससे रसूल मगमूम महजून हो जाते थे, तो रसूल इरशाद फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, हम्द है परवरदिगार आलम की हर हाल में, हर हालत में उसका, उसकी हम्द और उसकी सनाए। लिहाजा जो शख्स हम्द और शुक्र के दामन को थामे रखता है उसकी नेमतों में कभी कमी नहीं होती, सिवाय ये कि मसलियत हो या उसका इम्तिहान हो। वस्तहमदा इलल खलाइक बिइजजालहा वसन्ना बिनदब इला अमसालहा वअशहदु, अब जरा ये सुनिएगा कि बीबी इरशाद फरमाती है मैं गवाही देती हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, बीबी परवरदिगार आलम की वहदानियत की गवाही दे रही हैं। कलिमतुन जाल अल इखलासो तावीलहा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये एक ऐसा कलिमा है कि जिस कलिमे के जरिए से परवरदिगार आलम ने इखलास की तावील नसीब की है लोगों को, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के जरिए से लोगों को अपनी तौहीद में खालिस कर लिया है। अगर कोई अपनी तौहीद बिल्ला या तौहीद लिल्ला को खालिस करना चाहता है तो उसे चाहिए कि कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को अपनी जुबान पर दोहराए। बाज़ बुजुर्गान से ये सुना कि जब उनसे पूछा गया कि तरबियत औलाद के लिए क्या करें, औलाद बात नहीं मानती, बच्चे बात नहीं सुनते या बहुत मुश्किल हो जाता है इन्हें संभालना कभी कभार, तो क्या करें, इनकी तरबियत कैसे करें, तो जवाब दिया कि तुम ये समझते हो कि तुम तरबियत करते हो उनकी, मुरब्बी कौन है, मुरब्बी वो है, तुमने अपनी तरबियत करनी है, तुमने अपने आप को ठीक रखना है, तुमने अगर अपने आप को ठीक रख लिया तो वो तो कर ही ये रहा है कि तुम्हें कॉपी कर रहा है। यही वजह है कि जब एक बुजुर्ग आलिम दीन, कौन, मैं नाम ले लेता हूं उनका, मरहूम अल्लामा जवादी अल्लाह मकामाऊ, अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी अल्लाह मकामाऊ, जब उनसे किसी ने ये सवाल किया था और उनसे ये पूछा था कि किबला आजकल के बच्चे बहुत शरीर हो गए हैं या बहुत बिगड़ गए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसी वक्त फौरन बगैर तवक्कुफ के जवाब दिया कि बात सही है, बच्चे शरीर हो गए, बच्चे पहले की तरह से शरीफ नहीं रहे, बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, लेकिन हकीकत हाल ये है कि जो वालिदैन हैं वो पहले की तरह से सलामत नहीं रहे, शरीफ नहीं रहे। बच्चों का ख़राब होना उस जानिब नहीं, कहा कि मामला ये है कि वालिदैन माँ बाप पहले की तरह से शरीफ नहीं रहे। अब जब ये मैं जिस बुज़ुर्ग की बात अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में वो मुकम्मल हो जाए, कि जब उनसे पूछा कि इनकी तरबियत के लिए और ये वगैरह वगैरह क्या किया जाए, कहा कसरत के, एक तो ये कि अपने आप को ठीक रखो, नंबर दो कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा अपनी ज़ुबान पर जारी रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी नियत से कि परवरदिगार आलम तेरे सिवा और कोई इलाह नहीं है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं है, तू ही पालने वाला है, तू ही रब है, इनकी तरबियत तू कर दे, तो फिर परवरदिगार आलम की जानिब से कुमक होती है, मदद होती है। अच्छा, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला कलिमतुन जअलल इखलास तावीलहा, कि इस जुमले के जरिए से परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को इखलास से मुतारिफ करवाया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप जितने गैर खुदा हैं सबका इनकार कर देते हैं और खालिस होकर खालिसतन लिल्लाह सिर्फ और सिर्फ उसी की तौहीद पर ईमान रखते हैं आप। जब ये कहा जाता है कि फलां काम है, फलां काम है, फलां काम है, तो इंसान तो यकीनन वसीले और ज़रिए के बग़ैर तो ये दुनिया नहीं चलती, लेकिन ये कहना कि अगर वो ना होता तो मैं आज नहीं बच सकता था, ये जुमला कि ये तो परवरदिगार आलम, इसकी इस जुमले की जगह कि आज अगर उसे मैंने फ़ोन नहीं किया होता और वो नहीं आ गया होता मेरी मदद के लिए, तो ये काम आज रह जाता या मैं आज बहुत बुरी तरह से फंस जाता वगैरह वगैरह, इस जुमले को कहने की जगह ये कहा जाए कि परवरदिगार आलम ने बड़ा करम फरमाया, अगर उसका करम शामिल हाल ना होता, अगर अहले बैत अथार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फजल ना होता, तो आज मामला यूँ 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 ख़राब हो जाता। हर खैर को मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर वो शै कि जिस पर तुम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हो ये तुम्हारी तरफ से है, और हर वो शय जिस पर तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो ये उसकी तरफ से है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर वो चीज, हर वो काम, हर वो अम्र जिस पर तुम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हो ये तुम्हारी तरफ से, और हर वो चीज, हर वो काम, हर वो अम्र कि जिस पर तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो ये उसकी जानिब से। और उसके बाद बीबी ने कुछ तौहीद के और इस कलमे के एतबार से इरशाद फरमाया, और दूसरा जुमला बीबी ने जो नबूवत के एतबार से फरमाया है वो जुमला क्या है? वो जुमला है वो अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देती हूं इस बात पर कि मेरे बाबा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मेरे बाबा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये कौन फरमा रही हैं? जनाब सैयदा। तारीख में ले आइए बीबी सलामुल्लाह अलैहा के अलावा कोई एक फर्द भी और कि जो ये जुमला कहने का सजावार हो या जिसने कहा हो या जो कह सकता हो, सिवाय बीबी के और किसी का ये हक नहीं था कि जो ये कह सकता कि अशहदु अन्ना अबी मोहम्मदन रसूलुल्लाह। ये जो बीबी इरशाद फरमा रही है ना कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, कहीं ना कहीं ये जुमला इसके पीछे छुपा हुआ है कि देखो तुम किस पर जुल्म कर रहे हो, मैं उसी एक अल्लाह की मानने वाली हूँ कि जिस अल्लाह की तौहीद का पैगाम लेकर मेरे बाबा रसूल आए थे। वो अशहदु अन्नी मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कि अल्लाह का रसूल इस कुर्रे अर्ज़ पर, इस ज़मीन पर कायनात की रहमत बनकर जो अल्लाह ने बनाकर जो भेजा, वो कौन है? जिस रसूलुल्लाह का कलमा तुम पढ़ते हो वो मोहम्मद मेरे बाबा हैं। और यही रिसालत माब अपनी हयात तैयबा के अंदर ये इरशाद फरमा गए बार बार, फातिमा तो बस अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मुझसे हैं, मन आज़ाहा फ़कत आज़ानी, जिसने फातिमा को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई, वह मन आज़ानी फ़कत आज़ल्ला, और जिसने मुझे अज़ियत पहुँचाई उसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई। तो कहीं पर रिसालत माब ये इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं फ़ातिमतो बाबुहा बाबी, कि फ़ातिमा इनका दरवाज़ा मेरा दरवाज़ा है, वमन हतका हुरमतहू हतका हिजाब अल्लाह। और याद रखना, अगर किसी ने फ़ातिमा के दरवाज़े की हुरमत को पामाल किया उसने हतका हिजाब अल्लाह, उसने अल्लाह के हिजाब को पारा पारा कर दिया। अभी मजलिस से मुत्तसिल आप जो सोज़खानी समाज फरमा रहे थे, हिजाब फ़ातिमा का जिक्र सुना आपने, ये वो हिजाब फ़ातिमा है कि जिस नूर जनाब सैयदा को भी परवरदिगार आलम ने सुलबों के हिजाब में नहीं रखा है, अपनी कुदरत कामिला के हिजाबों में उसे पाला है अर्श पर, और रसूल को बुलाया नूर सैयदा को मुंतकिल करने के लिए। ज़रा सोचिए, वो सैयदा के जिसे अल्लाह ने जिसके नूर को बीबी के नूर को अपने हिजाबों में छुपा के रखा हो, वो बीबी दरबार में आ जाए, उस बीबी को दरबार में ले आया जाए, और वो बीबी कि जिस बीबी के दरवाजे को अल्लाह का रसूल अपना दरवाजा कहें, उम्मत उस दरवाजे पर आग को ले आए। अभी कुछ ही दिन तो गुजरे थे अब कि जनाब सैयदा ने अपने बाबा का जनाजा अपनी आंखों से देखा है। अभी कुछ ही दिन तो गुजरे हैं कि सैयदा का बाबा सैयदा की आंखों के सामने इस दुनिया से पर्दा फरमाकर अपने अपनी बेटी से जुदा हो गया, कि जिसके गम में बीबी हमेशा रोती रहती हैं, और सिर्फ बीबी नहीं रोती है, मदीना की दरो दीवार बीबी के साथ गिरिया करते हैं। मगर अजीज़ान मोहतरम, वो जो आखिरी वक्त था रसूल का, कि जब रसूल पर गशी तारी है, जनाब सैयदा अपने बाबा के सराने बैठी हुई हैं, एक मरतबा आने वाले ने दस्तक दी है दरवाजे पर, है कौन, मलकुल मौत है कि जो आया है, मगर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने कह दिया नहीं जानती कौन है, क्या फरमाया कि देखो आने वाले आहिस्ता से दरवाजा छो, दरवाजे का कि जो दस्तक है उसे आहिस्ता से बजाओ, इसलिए कि मेरा बाबा अभी अभी आंखें बंद हुई हैं आराम कर रहा है, मेरा बाबा मरीज है, मेरा बाबा बीमार है, और अगर तुम मिलना चाहते हो तो अभी पलट जाओ, कुछ बाद किसी और वक्त में आ जाना, बाद में आ जाना। मगर अजीजा ने मोहतरम, कुछ देर हुई है कि आने वाले ने दोबारा से दस्तक दी है दरवाजे पर, जनाब सैयदा का दिल एक मरतबा बेकरार हुआ, बीबी की आंखों से आंसू बरामद हुए, ये आंसू चेहरा रिसालत माँ पर गिरे, नबी की बेटी के आंखों से आंसू जब नबी के चेहरे पर गिरे हैं, मोहम्मद ने अपनी आंखों को खोला है, अरे एक मर्तबा अपनी रोती हुई बेटी को देखा, रसूल से बर्दाश्त ना हो सका, एक मर्तबा ये पूछने से पहले कि क्यों रो रही हो ये सवाल किया कि ए बेटा अभी तेरा बाप मोहम्मद जिंदा है, ये बेटा फातिमा रोना नहीं इसलिए कि जब तू रोती है तो तेरे बाबा को अजियत होती है, मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा या रसूल अल्लाह, अरे कुछ ही देर गुजरने वाली है, उसके बाद आपकी बेटी यही बेटी जिसका रोना आपको इतना सताता है ना, ये बेटी इतना रोने वाली है कि जब तक इस दुनिया से गुजर न जाएगी बस रोती ही रहेगी। मगर हाँ जीजो, जब सैयदा ने बताया कि बाबा को यह है कि जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बाबा ने कहा है मेरी बेटी जहरा तू जानती है दरवाजे के उस पार है कौन के जो बार बार दस्तक दे रहा है, कहा बाबा मैं आप पर फिदा हो जाऊं, बाबा बताइए कि कौन है, फरमाने लगे रसूल ये वो है कि जो अल्लाह की मर्जी से आता है और किसी और की इजाजत का पाबंद नहीं है, ए जहरा मगर ये तेरे दरवाजे का इम्तियाज, मलकुल मौत भी तुझसे इजाजत तलब कर रहा है, अरे वो दरवाजा जिससे मलकुल मौत बगैर इजाजत के अंदर ना आया, अरे सुम्मत ने इस दरवाजे को
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.
پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بار الہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پرسے کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مولا و آقا کے آبان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے. شہید حمید علی بھوجانی, مرحوم دوست محمد بھوجانی, مرحوم ولایت حسین اے وی ڈی اور مرحومہ اقصی زہرا, اکبر علی فدا حسین لال جی, شہید استاد سبت جعفر حیدر واڑیا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, مولانا ہاشم رضا جعفری مرحوم, سید مقبول حسین رضوی, سید مظہر حسین, سید علی عابد, سید حیدر مہدی, سید تقی عابد رضوی, مسٹر اینڈ مسز شیر علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, نایانی لال جی, دیوجانی, بھوجانی, روحانی, بادامی اور شریف خاندان کے تمام مرحومین, تمام علماء, شہداء اور مرحومین مومنین مرحومات مومنات کے جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا, شہداء کربلا علیہم السلام کو شامل کرتے ہوئے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, تابع بیننا وبینہم بالخیرات, انک مجیب الدعوات, انک علی کل شیء قدیر, برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم سیدہ, ماتم زہرہ.